आप लोगों के मार्क्स उस वक्त नहीं आए थे, उम्मीद है सबको उनके मार्क्स मिल चुके होंगे। माशाल्लाह मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे सबने माशाल्लाह से टेस्ट किए हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं आप, पहले से बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आने वाला हर दिन हमारे पिछले दिन से बेहतर हो। और वो कैसे बेहतर हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, हलाक हो गया वो जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो आज हमारे यस्टरडे से बेहतर होना चाहिए। और वो कब बेहतर हो सकता है? अमल में तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी जब हम अपने इल्म में आगे बढ़ेंगे। इल्म में आगे बढ़ेंगे तो अमल में बढ़ेंगे। तो देखिए, आज तक जो आपने हदीस अभी तक पढ़ी है, आपकी नमाजों में, आपकी ईमान की समझ में कि ईमान क्या चीज होती है, और नमाजों के जितने मसाइल हैं आपने पढ़े हैं, तो काफी फर्क उम्मीद है कि आया होगा नमाज में, उसके अदायगी में, अरकान में। ये बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी भी इसलाह कर सकें और अपने इर्द गिर्द वालों की भी इसलाह कर सकें। सिवाय इसके कि थोड़ी सी ये बात देखनी होती है कि बहुत ज्यादा जल्दी एकदम इम्पोज ना करें लोगों पे, क्योंकि जो चीज़ वो बहुत अरसे से कर रहे होते हैं वो उसमें तब्दीली लाना कोई बहुत ईजी बात नहीं होती। इट टेक्स टाइम। इसलिए ये ना सोचिएगा कि बस मैं आज पढ़ूं और मैं बस फौरन फतवे देने शुरू हो जाऊं, लोगों को बताने शुरू हो जाऊं कि ये देखें इस तरह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और इसको बहुत आराम के साथ, दलील के साथ बात पहुंचाई जाए। ठीक है, और ये भी देखा जाए जिसको आप पहुंचा रहे हैं तो उनका नॉलेज कितना है, क्योंकि जिन ने खुद कुरान से जुड़े होंगे, जो लोग खुद इल्म के रास्ते पर होंगे, उनको समझाना ज्यादा आसान होता है। और जो लोग अभी बिल्कुल नहीं होते, उनके लिए पहले आप इसी चीज की कोशिश करें कि वो लोग नमाज पे कायम हो जाएं। ठीक है, डॉक्टर जैसे देख के दवा देता है ना, हर एक को एक दवा तो नहीं पकड़ा देता, हालांकि मरीज तो उसके पास सारे कोई बीमारी ही लेकर आते हैं, लेकिन हर बीमारी का इलाज एक नहीं है। इसी तरह आपने हर एक के साथ एक जैसा डील नहीं करना होता। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अब जो हदीस के स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने उनका जो रिक्वायरमेंट ही थी इस कोर्स की, वो यही थी कि आप लोगों ने 18 से 20 पारे किए हों कम से कम। तो अब आप लोग एक हायर लेवल पे, अब ये भी हिकमत आनी चाहिए कि किस तरह से पहुंचाया जाए। हैजर्ड नहीं होना चाहिए, बगैर हिकमत के नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले जी, इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। हमने ये अपना मुकम्मल कर लिया था ना, किताबुल जुमा। ठीक है, अब हमने किताबुल ईदैन, सलातुल ईदैन स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री واحلل عقدة قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين। ये आपने लिखा है कि आपने क्लास से बहुत लर्न किया लेकिन लास्ट टेस्ट में आपका अच्छा नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि आपने जो लर्न किया है वो आपके अमल में आया ही नहीं, वो ही आपका रिजल्ट है। टेस्ट का रिजल्ट वो नहीं है जो आपके नंबर है, टेस्ट का रिजल्ट वो है जो आपके अमल में आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई एम्बेरसमेंट की जरूरत नहीं है। मसला हो रहा है जी, अब आ रही है आवाज़ जी? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ये शाजिया नासिर, आप बताइए कि ईद का माना क्या है? शाजिया नासिर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अदा करना बार बार आने वाला या जैसे मुसलमानों की खुशी के लिए जो त्योहार हैं जिससे हम अल्लाह ताला की इबादत करके जो खुशी का इजहार किए उसको
अच्छा ठीक है, यानी बार बार लौट के आने वाली, क्योंकि हर साल आती है ना ईद, तो बार बार लौट के आने वाली, तो उसको ईद कहते हैं। और मुसलमानों की ईद और दूसरे लोगों की खुशी के त्योहार में क्या फर्क है राफिया बेगम?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी मुसलमानों की ईद और आप क्या कह रहे थे?
और जो गैर मुस्लिमों की खुशी के जो त्योहार हैं उसमें फर्क क्या है? आपको एक फर्क जो वाजे महसूस होता है, खुशी के तो दोनों के हैं लेकिन जो वाजे एक फर्क महसूस होता है, क्या फर्क है? इसमें नहीं आया ये ये हदीस में नहीं आया, मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ।
हमारी खुशी का मतलब हम जैसा हमारी इबादत है, जैसा नमाज पढ़ना है, जो ईद की नमाज है जो हर
शाबाश। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन जी। हमारा और दूसरे लोगों के खुशी मनाने में एक बहुत बड़ा फर्क जो है, जो बहुत अहम है, जो वेरी डिफरेंट थिंग, वो यही है कि हम अपनी खुशी का दिन भी स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह की तकबीर बयान करके, उसकी तारीफ बयान करके, उसके आगे झुक के। जबकि दूसरे लोग जब अपनी खुशियों के त्योहार मनाते हैं तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं और वो बहुत सारे वो काम करते हैं जो कि यानी कोई इबादत से उनका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमारा खुशी का दिन भी इबादत से स्टार्ट होता है। ये अलग बात है, चूंकि चीजों को भूल गए हैं तो अब हम इबादत को छोड़ के और ज्यादा हमारी तवज्जो जो होती है वो दूसरी चीजों में हो गई है और ईद की नमाज को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जी यास्मीन सईद, आप बताएंगी कि दोनों ईदों की नमाजों में क्या फर्क है?
तो इनमें फर्क नहीं है कोई भी, दोनों नमाजें एक ही हैं।
शाबाश, दोनों ईद की नमाजें एक ही हैं, इनके पढ़ने में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इस चीज को ज़हन में रखें कि एक दफा आपने सीख लिया तो वो दोनों ईदों के लिए आपके लिए काफी है नमाज का तरीका, ठीक है? अच्छा राहत अमजद, आप बताएंगी कि जैसे हम मस्जिद जाते हैं तो हम वहां पे नमाज दो नफल अदा करते हैं तहय्यतुल मस्जिद, तो क्या ईद की नमाज के लिए जाने वक्त भी हम ये अदा करेंगे? वालेकुम अस्सलाम
वरहमतुल्लाह। जी पहले ईद की नमाज के लिए मतलब उससे नमाज से पहले कोई नफल नहीं है।
जी बिल्कुल सही, लेकिन तहय्यतुल मस्जिद के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों में ना बैठा जाए तो।
जी लेकिन ईद की स्पेशली कहा गया कि मतलब ईद की नमाज से पहले मतलब पढ़ने से मना किया गया है।
अब क्या किया जाना चाहिए फिर इसका?
अलग से पढ़ के जाए
नहीं, वो फिर तहिया
किसी ने पढ़ने हैं तो फिर नहीं सच, आप तो पूछ रहे हैं कि तहय्यतुल मस्जिद तो नफल पढ़ के पहले मस्जिद में जाए तो दो नफल नमाज पढ़ के बैठे।
जी देखिये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया है ना कि ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं, जैसे अभी आपने बताया, तो उसके अंदर देखिए ये है कि ईद की नमाज पहले मैदानों में हुआ करती थी और अभी भी हमारे मुल्क में खुले मैदानों में ईद की नमाज अदा की जाती है। अब मसला हमारे यहाँ पे इस मुल्क में ये है कि मस्जिद में अदा की जाती है। अब देखें दोनों चीजें अब हमारे लिए देखने की है कि हम इस चीज को भी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं और ये भी फरमाया कि मस्जिद में बैठो ही नहीं जब तक दो नफल नहीं अदा करूं, तो वो उस सूरत में होगा जब आप मैदानों में जाकर ईद की नमाज पढ़ेंगे तब तो आपने कोई नमाज नहीं पढ़नी, ये जो जितनी नमाज है ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं, कोई नफल नहीं। लेकिन अगर आप मस्जिद में जाके बैठ रहे हैं तो फिर आपको वहां पे तहय्यतुल मस्जिद पढ़ के फिर आप बैठे, क्योंकि वो भी हदीस से साबित है, ठीक है? अच्छा इसमें अजान और इकामत का क्या सिलसिला है ये बताएंगे शहादी आप?
अजान अजान के बगैर पढ़ी जाती है।
शाबाश बिल्कुल, ये अजान और इकामत दोनों ही इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सही है। हुमा गनी आप बताएंगे ये कितनी रकत नमाज है?
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا کوشچن ہے کتنی رکعت؟ دو رکعت ہوتی ہے.
دو رکعت, شاباش, دو رکعت نماز ہوتی ہے. اچھا, اب مجھے ناظرین آپ بتائیں گی کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ناہید صدیقی جی, اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
میں جو ہے خطبہ جو ہے بعد میں ہوتا ہے,
نماز
پہلے ہوتی ہے, خطبہ بعد ہوتا ہے. خطبہ سننا فرض نہیں ہے.
بالکل,
جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے.
بالکل صحیح, شاباش. یعنی خطبہ سنے بغیر بھی یہ نماز ادا ہو جائے گی آپ کی, مگر یہ ہے ڈفرینس ایک ہے کہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے, اس کے اندر پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ادا کیا جاتا ہے. اچھا جی, اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں. شکیلہ آنٹی, آپ بتائیں گی کہ اس نماز کی نیت کیا ہوتی ہے؟
نیت ہے کہ نماز کا دل میں ہوتی ہے, ویسے نیت کرتے
ہیں. جی, الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں, یہ بس دل میں ہے. شاباش. عشرت فاطمہ, آپ بتائیں گی کہ اس کیا عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانا ضروری ہے یا گھر میں ہی پڑھ لیں؟ گھر میں ان کا پڑھنا بہتر ہی ہوتا ہے نا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عید کی تاکید کی کہ اپنی عورتوں کو عید کا لے جائے, عورتوں کو اپنی نصیحت اور تاکید کی ہے کہ عورتیں کو لے جائے اور وہ حیض کی حالت میں بھی ہو تو لے جائے اور وہ چادر اوڑھ کر جائے, اور اگر ان کے پاس چادر نہیں ہے تو کوئی ان کی پڑوس یا بہن سے لے کر جائے, اور لیکن جانا ضروری عورتوں کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تاکید ہے.
شاباش, ویری گڈ. بہت اچھا انہوں نے بتایا کہ ساری باتیں اس میں کور ہو گئی. ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو ظاہر ہے یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے, تو لیکن عید کی نماز کے لیے اسپیشل تاکید کی گئی. اور لیکن آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, سو کے ہی نہیں اٹھتے, عید کا دن بس چھٹی کا دن ہے, اور انہوں نے تیار اس وقت ہونا ہے جب شام کو کوئی کہیں جانا ہے کسی پارٹی پہ یا کسی نے آنا ہے تو تب تیار ہوں گے, اس سے پہلے سیدھا کپڑوں میں ہی بیٹھے رہیں گے. اور اٹھنے کا بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے کہ عید کی نماز کے لیے کوئی اٹھ کے جلدی غسل کیا جائے اور مطلب تیار ہوا جائے اور نماز باقاعدہ اٹینڈ کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں پہ تو وہاں پہ انتظام ہی نہیں ہوتا عورتوں کا. اب جیسے جیسے زیادہ علم بڑھ رہا ہے لوگوں میں تو الحمدللہ اہتمام تو ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں ایسی جگہ, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں میں اویئرنیس نہیں ہے, وہ بالکل عید کی نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. تو عید کی نماز کے لیے اب یہی ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ عورتیں ہیں چاہے انہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی, لیکن تم چلو, ایون پردہ نشین عورتیں چلیں جو کبھی نہیں نکلتی, وہ بھی عید کی نماز کے لیے جائیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں اوڑھنی کا بھی خاص طور پہ ذکر ہے کہ جو ہے اوڑھنی بھی اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ بھی کسی سے مطلب لے لے اور وہ عید کی نماز اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں. اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو میرے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں. یعنی اتنی اس وقت زمانے میں تو غربت ہی, آج کس کے گھر میں چادر نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود कोई भी इसका इतमाम करना जरूरी नहीं समझता, और बल्कि बंद समर की ईद की नमाज के लिए जाया जाता है, वो एक फैशन शो से ज्यादा कुछ नहीं होता फिर, कि हम उल्टा गुनाह लेके आ जाते हैं। ये बातें हमारे लिए समझनी इसलिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि आगे इंशाल्लाह ताला डेढ़ एक महीने में हमारी भी ईद आने वाली है, तो इस चीज को हम फिर कंसिडर करें इस तरह से कि हमने ऐसे नहीं जाना। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके पास है ही नहीं चादर उसको भी नहीं ये इजाजत दी कि वो बगैर चादर के चली जाए, तो हमें कैसे इजाजत होगी जिनके घरों में चादरों के अंबार हैं, कपड़ों के अंबार हैं। तो इसी ये बहुत अहम बात है, इससे हमें पता चलता है हमें मस्जिद में कैसे जाना चाहिए, और किसी तरह से भी इसकी माफी नहीं है कि पर्दे को छोड़ के हम वहां पे घूमते फिरे ऐसे। इसलिए प्लीज इस चीज को, इस एक हदीस को भी लेके आप जरूर प्लीज फैलाएं इस एक हदीस को। ये हदीस नंबर 511 है, इसमें हाइजा औरत का भी आ गया, इसमें पर्दा नशीन का भी आ गया, इसमें पर्दे की अहमियत का भी आ गया, और इसमें ईद की नमाज की अहमियत का भी आपको पता चल गया कि ईद की नमाज का की कितनी बड़ी अहमियत है। अब बहुत अहम हदीस आ रही है अगली, 512 हदीस। ये खोलें अपनी किताबें और देखें ईद के दिन मुबाह खेल खेलना जायज है। आप मुझे बताएंगे कि इस हदीस से आपने क्या सीखा। तहसीन आप बताएंगे इस हदीस से आपने क्या सीखा।
वालेकुम
अस्सलाम।
जी सर, इस हदीस में जैसे बात हो रही है कि ईद के दिन में मुबाह खेल खेलना जायज, इससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई मतलब खेल जिसमें कोई मतलब आपका पर्दा नहीं खुल रहा है, अल्लाह सुब्हानहु तआला के सब कुछ शेख नहीं हो रहा, या अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जिन अहकाम से हमें मना किया है हम उन सारी चीजों में मुब्तला नहीं हुए हैं, तो आप इस तरह की मस्जिद कायम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहु तआला के हुक्म से आप बाहर जा रहे हैं वो चीजें आप नहीं कर सकते। अब जैसे होता है कि ईद के भी निकल जाते इस तरह की चीजें, तो ये इसमें शामिल नहीं है। मतलब अल्लाह के अहकाम को आपको नहीं तोड़ना है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हमें हुक्म दिया उसको उसको नजर रखते हुए हमें अपने खेल और तमाशे के।
बिल्कुल शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया। इरम खान अब आप भी बताएंगी आगे कि इसमें वो अशार गा रही हैं, तो गाना फिर क्या जायज है? ये गाने वाली
नहीं, अशार गा रही थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं, इसमें ख्वाहिशात को उभारा जाए या कोई इसमें गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो उस लिहाज से तो फिर ये था कि उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें म्यूजिक नहीं थी कोई तरह जो कि शैतान की आवाज इसको कहा जाता है, जिसको मना किया गया।
सही, बिल्कुल सही है। 512 और 513 हदीस हम देखें। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ज्यादा ये बात पूछ रही हूँ, वजह इसकी ये है कि बाज दफा लोग लेकर और सब किस्म की खुराफात को भी जायज कर देते हैं। देखो नहीं, ये देखें ये हदीस, ये तो इसमें है, इसी तरह शादियों के ऊपर वो सोचते हैं कि देखें। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि किस किस्म का गाना गाया जा रहा था, कि जंगे बवास के किस्सों की नज़में पढ़ी जा रही थी। हाँ, दफ बजाने की इजाजत जरूर है, वो हदीस से भी साबित है, लेकिन इसके अलावा क्या और गाजे बाजों की इजाजत है? नहीं, वो यहाँ पे तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा। और इसमें वो भी नहीं है कि कोई उन्होंने गाने वालियां बुलाई, कोई बच्चियां ही बैठ के गा रही थी। और आप इसमें अच्छा, और भी मैं लोगों से पूछती हूँ, अगर हो सकता है किसी और को इसमें से पहले कि मैं खुद बताऊं, आप लोग भी सोचें कि आपको क्या इसमें, राजिया आप बताएंगे आपको क्या इसमें और चीज नजर आई है जो आपको सबक इससे मिला।
मुझे बस यही समझ आया था कि हमें मतलब जो लोग ये इसी बात की दलील बना लेते हैं ना, उसमें बस यही है कि हमें देखना चाहिए कि ये चीजें जो है हमें अल्लाह से हमारा रास्ता तो नहीं तोड़ रही है। इसके अंदर जो चीजें थी वो हमारे वापस हमारे ईमान को मतलब शैतानी उस तरफ तो नहीं लेके जा रहे।
सही, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये करूँ की ये जो दो तीन अहादीस है ना, इससे एक बात और जो हमें समझने की है, खुशी मनाने से मना नहीं करता। जो हमारा तफसीर में भी इस दफा सबक यही था, इसी बात की तरफ था। देखिए, खुशी मनाना कोई इसमें कबाहत नहीं है, वो आपका राइट है, मगर एक मोमिन के खुशी मनाने के तरीके में और काफिर के खुशी मनाने के तरीके में बहुत फर्क है। ठीक, मोमिन का मिजाज डिफरेंट होता है, काफिर का डिफरेंट। मोमिन देखें, जब वो अपनी खुशी मनाता है तो वो कैसे मना रहा है? जब वो भी गाना गा रही है, अशार पढ़ रही है, अगर वो दफ भी बजा रही थी जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए थे, जब हिजरत की थी और उनको वेलकम किया था, तो उस दिन भी दफ बजा रही थी और गा रही थी, इसका मतलब खुशी के मौके पे गा सकते हैं। जब हम इंतहाई रिजिड होते जाते हैं ना, या तो हम एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ओ नहीं 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 ये सब खत्म, जैसे अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने कहा कि ये क्या शैतानी बाजा, इसका मतलब कुछ बज भी तो रहा था वहां पे, ये समझ आ रही है आपको बात, इसका मतलब कुछ बज रहा था ना वहां पे, लेकिन वो क्या थे, दफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये क्या बात होगी। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शफीक और मेहरबान है कि वो मिजाजों की रायत करने वाले थे। और आप यहाँ पे देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की खामोशी इजाजत थी, ठीक है, लेकिन आपने खुद हिस्सा नहीं ले लिया कि जो ना अब मैं खुद भी गाऊं और बजाऊं उनके साथ, आप जंगे बवास की तो किससे थे, तो ना तो हिस्सा लिया और ना ही उनको मना किया, इसका मतलब ये मुबाह चीज है, ना इसमें कोई गुनाह है और ना ही इसमें कोई सवाब है। क्या हम लोग जब बहुत दीन की तरफ जब आने का वो करते हैं ना, तो हम हर चीज को हराम की कैटेगरी में डाल देते हैं, दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं वो हर चीज को हलाल की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब वही बात कि ना तो दीन इतना ज्यादा लिबरल है कि उन चीजों की इजाजत दे जो कई लोग पता नहीं क्या क्या म्यूजिक को हलाल कर देते हैं और नाचने गाने को हलाल कर देते हैं, ना दीन ऐसा लिबरल है, ना दीन ऐसा सख्त है कि किसी को कहता है कि नहीं आपने खुशी ही नहीं करनी और आप गा ही नहीं सकते। तो देखिए हमें बैलेंस करना है, और जब हम बैलेंस चलेंगे ना तो फिर कोई भी दीन की तरफ आने से डरेगा नहीं। हम लोगों को इतना डरा देते हैं कि जब हम कुरान या ये पढ़ते हैं ना, तो फिर हम लोगों को ऐसा कर देते हैं कि बस हर चीज बैन हो गई, इस वजह से लोग फिर दीन से भागने लगते हैं, क्योंकि हम वो नीम हकीम खतरा जान वाली बात है ना, कि हम भी नीम हकीम है कि वो हर चीज को हमने गुनाह की कैटेगरी में डाल देना। अगर ये गुनाह होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी इसको मना कर देते, लेकिन आपने मना नहीं किया, ना बंद किया, ना ही उसको ऐसा इनकरेज किया कि भाई हर जगह हर वक्त यही होता रहे। तो इस चीजों से हम समझे, और बच्चे बच्ची बच्चियां गा रही हैं अगर, तो बच्चियां अगर कोई गा रही हैं वो नहीं, ये नहीं कि जो सीनियर लोग हैं या जो दीन के वो लोग हैं वो भी साथ शुरू हो जाएं और बस एक मतलब हंगामा सा एक हो जाए, नहीं, इसके अंदर इसमें भी एक बैलेंस रखना है। और बच्चे कोई ऐसा, क्योंकि उनकी एज ऐसी है ना, वो कोई ऐसा फन करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हैं जो लिमिट्स के अंदर है, तो आप उसके ऊपर फौरन ऐसा फतवा ना लगाएं। शादी पे हो गया या ईद का मौका, देखिए इस यही एग्जाम्पल शादी के लिए भी, तो उस वक्त भी बैलेंस रखें, ठीक है। इस चीज को हमें बहुत समझ के चलना है, और इसमें कोई नाचने और थिरकने और म्यूजिक के ऊपर डांस करने इसकी भी कोई यहाँ पे बात नहीं आ रही, तो आप देख रहे हैं कि लिमिट्स क्या है, ठीक है जी, बिल्कुल वेरी थिन लाइन है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है हम सबको। आजकल ओनली हराम एंटरटेनमेंट, हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं उसको इन हदीसों को कोट करके और वो हराम एंटरटेनमेंट को जायज समझ लेते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह तआला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ तक हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम हम बाकी करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।